आप बाल ब्रह्मचारी कुमार भाई है। 1962 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, जब आप धनबाद में ONGC में कार्यरत थे चीफ इंजीनियर के पद पर। उसके बाद बिहार, आसाम, गुजरात, अनेक बाबा की ब्रांचेस शाखाएं खोलने के आप निमित्त बने। और 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हुए, उसके पहले अंतिम दो दिन आपको बाबा के साथ रहने का परम सौभाग्य मिला। आप बाबा की कर्मातीत अवस्था को करीब से आपने देखा है। 1996 में आप चीफ इंजीनियर के पद पर जब कार्यरत थे, तो आपने VRS लेकर मधुबन में आप समर्पित हो गए। और 1996 में आप ज्ञान सरोवर बनाने के निमित्त बने। 1988 में आप साइंटिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने और आपने बहुत सारी एग्जीबिशन को भी बनाया है। भारत सरकार के HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी ने आपको पर्यावरण श्री के सम्मान से सम्मानित किया है। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप उल्लेखनीय सेवाएं आपने दी है, तो 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपने देश विदेश की अनेक यात्राएं की है, बाबा का जन जन तक संदेश पहुंचाया है, और साथ साथ आप एक राइटर भी है। आपने 5 किताबें भी लिखी है। आपका सादगी पूर्ण जीवन अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसी महान हस्ती आज हम सबके बीच में उपस्थित है, तो अभी हमें मधुबन का महत्व और साथ में कैसे हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें और साथ में अपने अनुभवों के मोती आप हमें प्रदान करेंगे। आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब, ओम शांति।
ओम शांति। दादी जानकी जी कई बार कहती हैं कि खाली हम ओम शांति ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आत्मा के अनेक गुण हैं तो कई गुणों की हमें समय प्रति समय अपने में स्मृति लानी चाहिए। तो उसी से ही हम शुरू करते हैं। ओम आनंद, आप सब भी बोलिएगा। ओम प्रेम, ओम शक्ति, ओम ज्ञान, ओम सुख, ओम पवित्रता। सब आ गए क्या? 7 हो गई। तो ये सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, जो ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, इन सभी को भी समय प्रति समय हमें अपनी स्मृति में लाना चाहिए। और इन सबको एक कंडेंस रूप में ही, क्योंकि जब हम शांति स्वरूप में स्थित होते हैं तो सारे गुण जैसे उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए जब आपस में मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं। साथ ही जब ये ओम शांति की स्मृति जो है हमें अपने स्वधर्म में स्थित करती है, और जब हम स्वधर्म में स्थित होते हैं तो दूसरे को भी सहज ही स्वधर्म में स्थित करा सकते हैं। हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल है। एक यही ब्रह्मा बाबा ही हैं जिन्होंने अभी तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके संपूर्ण अव्यक्त होकर फरिश्ता स्वरूप स्थिति को भी प्राप्त किया, और आज भी बाप दादा हम सबसे मिलने के लिए आते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं, रोल मॉडल हैं, तो ब्रह्मा बाबा के समान ही हम सबको भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की स्थिति को प्राप्त करना है। हम सभी का पुरुषार्थ हो ही रहा है उस एक अंतिम क्षण के लिए, किस क्षण के लिए? जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, क्योंकि गायन है अंतमते सोगति का गायन। तो जितना भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस क्षण के लिए कर रहे हैं, अंत में जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी और उस समय जैसी हमारी स्थिति होगी वैसे ही हमारी गति होगी, वैसा ही पुनर्जन्म होगा, वही हमारी सारी प्रारब्ध होगी। इसीलिए जो भी हमारा पुरुषार्थ है उस एक लक्ष्य को सामने रखते हुए हम सबको करना है। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को अभी इसीलिए बार बार इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि हम सबको जो हमारे खजाने हैं उन सब खजानों को जमा करते हुए जाना है, क्योंकि जब खजाना कोई जमा होता है तो कभी भी उस खजाने को निकाल करके यूज कर सकते हैं। बैंक में पैसा है, कभी आवश्यकता पड़ी पैसा निकाल लिया, यूज कर लिया। घर में अनाज पानी है, 50-100 लोग भी आ जाएंगे, सब भोजन बन सकता है। तो जो भी चीजें हैं उन सब खजानों को अपने देखते चलना है। तो वैसे तो बाबा ने समय प्रति समय अनेक खजाने हम बच्चों को बताए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का आदि आदि, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दो खजाने बताए हैं सबको याद है ना, कौन से खजाने? समय और संकल्प का। तो इसीलिए इन दो खजानों को हमें देखते चलना है कि ये खजाने कहीं लीक तो नहीं हो रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लेकिन जमा के साथ साथ अगर लीक भी होते चलेंगे तो जमा तो पूरा होगा नहीं। तो इसीलिए बाबा ने यह भी बता दिया है कि जो पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, अक्सर करके उनमें ये खजाने हमारे लीक हो जाते हैं। कोई भी पेपर है, मानो कोई परिस्थिति आई, कोई पेपर आया, बस व्यर्थ संकल्प चलेंगे, संकल्प चलेंगे तो समय भी वेस्ट होगा और समय और संकल्प रूपी खजाना वेस्ट होगा तो जमा कहाँ होगा। तो इसीलिए पेपर्स की भी हमें स्मृति रहे, जानकारी रहे, जिससे हम पहले से ही सावधान हो जाएं। लौकिक में भी स्टूडेंट्स का जब एग्जाम होता है, पेपर होता है, तो उन्हें मालूम होता है भाई फलानी तारीख को फलाना पेपर है, फलाना जगह हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पर आएगा, इतने घंटे का पेपर है, सब कुछ मालूम होता है, केवल क्या मालूम नहीं होता, क्वेश्चन कौन सा आएगा, बस बाकी सब मालूम है। और हमारा जो है इससे बिल्कुल उल्टा है, हमें क्वेश्चन मालूम है क्या आएंगे, पेपर क्या होंगे, लेकिन कहाँ होगा, किस समय होगा, कितनी देर का होगा, वो सब कुछ नहीं मालूम। तो उस परीक्षा में और इस परीक्षा में हमारे एक तो ये अंतर है, पेपर मालूम है, कौन सा पेपर आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, बताओ, बाबा ने कई बार बताया हुआ है ना, कौन से क्वेश्चन आएंगे है? देखो सब बाबा ने एक स्थूल से चले तो स्थूल में तो एक ये पेपर की भाई जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके अभाव का पेपर। अभी भी कई दिनों से 6-7 दिन पहले, 10 दिन पहले सुना होगा ना, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ वहां बादल फटा, पानी बहुत आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो आवश्यक वस्तुओं के अभाव अभी भी, कल भी कुछ न्यूज आ रही थी, आजकल जो लोग लौट के आ गए हैं उनके इंटरव्यू में तो वो सब बताते हैं कैसे हम दो दो तीन तीन दिन तक बिना खाने के रहे, बिना पानी के रहे, सब कुछ था सामने, पानी पानी था लेकिन पीने लायक नहीं था। क्यों? बाढ़ थी, पानी था, बादल फटा था, लेकिन पानी पीने लायक नहीं था। तो एक तो बाबा ने यही बताया सब बच्चों के सामने, आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, भोजन होगा खाने लायक नहीं होगा, पानी होगा पीने लायक नहीं होगा, जहरीला हो जाएगा, वायु इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी, वायु है लेकिन श्वास नहीं ले पाएंगे, ऐसी ऐसी स्थिति। तो ये तो एक स्थूल पेपर, और बाबा ने पांच विकारों का पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, प्रकृति का पेपर, पांच तत्वों का वो पेपर, और जब अकाले मृत्यु और समूह मृत्यु होती है तो कौन सा पेपर और होता है, भटकती हुई आत्माओं का पेपर। जब समूह में मृत्यु होती है, एकाएक इतने लाखों हजारों लोग जब जाते हैं आत्माएं शरीर, तो वो जैसे उनका अगर गर्भ में शरीर भी तैयार नहीं तो भटकती हुई कुछ आत्माओं का, फिर वो अपनी अतृप्त इच्छाएं जो है दूसरों के माध्यम से, जो देहधारी हैं उनके माध्यम से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, आदि आदि कई पेपर बाबा ने समय प्रति समय हम बच्चों को बताए हैं। लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से बाबा ने बताया दो पेपर बच्चों के सामने जो विशेष आने हैं अंतिम पेपर से पहले वर्तमान समय, वो बाबा ने बताया। एक तो पेपर है वो शरीर का पेपर, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, हम सबके सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं, तो भले हमारा बहुत वृद्ध शरीर न हो, बीमारी वाला न हो, लेकिन हिसाब किताब जो इस शरीर के द्वारा चुकतू होने हैं वो सबके सामने आएगा पेपर। एक तो इस शरीर का पेपर, और दूसरा पेपर है परिवार का पेपर, ब्राह्मण परिवार से जो पेपर आएगा, क्योंकि अभी हमारा संसार तो यही है, बाहर के दुनिया वालों से इतना ज्यादा हम लोगों का वो नहीं है, तो इन दो पेपर के लिए हमें अपनी पूरी तैयारी साथ साथ करते रहना है। जो परिवार का पेपर आएगा कैसे आएगा, जो बहुत पुराने आत्माएं हैं देख रहे हैं कईयों का, किसी भी आत्मा में जब कोई हम कमी देखते हैं, कोई ऐसी बात देखते हैं जो मर्यादा के अनुकूल नहीं होती, तो मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है, अरे ये मनुष्य ये आत्मा इतने 20 साल पुराने, 25 साल, 40 साल, 50 साल पुराने, इनमें भी अभी तक ये कमी, ये विकार, तो व्यर्थ संकल्प, संकल्प व्यर्थ होगा तो समय भी व्यर्थ होगा। तो इसलिए ये जो परिवार का पेपर आएगा, इस पेपर में कैसे हम अपने खजानों को भी सुरक्षित रखें, व्यर्थ संकल्प न चलें, उसके लिए बाबा ने कहा है क्या करो, किसी भी आत्मा को जब देखो तो उसको केवल एक काल की दृष्टि से न देखो, तीनों कालों की दृष्टि से देखो। तीनों कालों का मतलब ये आत्मा वो ही है कल्प पहले वाली आत्मा, और बाबा ने जो कहा है, बाबा ने कहा है मेरा एक एक बच्चा जो है वो मेरा चुना हुआ बच्चा है, भगवान ने चुना है, मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, बाबा ने चुना है, और बाबा का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, बाबा ने चुना है। तो इसलिए उस आत्मा का भले आज इस समय वर्तमान में कोई कमजोरी का या कोई पार्ट चल रहा है, लेकिन इस आत्मा के द्वारा ही भगवान की प्रत्यक्षता होनी है अंत में, एक एक बच्चे के द्वारा किसी न किसी रूप से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। इसीलिए हम केवल उसे वर्तमान के दृष्टिकोण से न देखें, उसके भविष्य के भी, ये वही डबल ताजधारी आत्मा है, आज उसका ये पार्ट है, कल जाके जब अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करेगी, इसके द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होनी है। ये वही आत्मा है कल अब पहले भी, 5000 साल पहले भी इसके द्वारा प्रत्यक्षता हुई थी, तो उसको महानता की दृष्टि से, जो बाबा अपने एक एक बच्चे को महानता की दृष्टि से देखता है, हम भी बाबा के हर बच्चे को उसी महानता की दृष्टि से देखें। तो क्या होगा, फिल्म में भी लौकिक फिल्म होती है, ड्रामा होता है, उनमें भी कोई सारे पार्ट एक जैसे थोड़ी होते हैं, सबके पार्ट अलग अलग होते हैं, और कभी कोई हीरो का पार्ट, हीरोइन का पार्ट, कभी ट्रेजेडी का पार्ट, कभी कॉमेडी हंसने हंसाने वाले का, कभी नाचने वाले, तभी तो वैरायटी ड्रामा होता है। तभी तो बाबा ने भी कहा है कि मुझे ये ड्रामा, विश्व ड्रामा अति प्रिय है। तो जब भगवान को भी अति प्रिय है, तो हम कौन होते हैं किसी भी बच्चे के कोई कर्म को, कोई बात को देखते हुए, अरे इसमें ये बात। कभी भी हमारे मन में उसको देखकर ये न हो, क्योंकि भगवान ने चुना है, और इस समय ये समय भी बीत जाएगा। तो इसीलिए एक तो कभी भी किसी के प्रति हमारे मन के अंदर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न हो, क्यों, क्या, कैसे, का ऐसा क्यों। तो उससे क्या होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा, संकल्प भी बच जाएंगे, कोई वेस्ट नहीं होगा, और उस आत्मा के प्रति हमारे मन से शुभ भावनाएं निकलेंगी, जिससे वो अपने कमजोरी को ओवरकम करके अपने आत्म स्वरूप की ओरिजिनल स्थिति में सहज आ सकेगा। एक तो बाबा ने कहा बच्चों के सामने ये पेपर अवश्य आएगा, क्योंकि चारों तरफ जब ऐसा वातावरण होगा, विकारी वातावरण होगा, हाहाकार होगा, बाहर अति हलचल होगी, उस पर विजय पाने का साधन ही है अति अचल। बाहर हलचल हो, अंदर हम अचल हो, और जितना हम अचल होंगे उतना हम सफलतापूर्वक बाहर के वातावरण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तो ये, तो बाबा में भी हमने यही देखा, साकार बाबा के साथ रहने का हमें काफी मौका मिला। 6-7 साल तक बीच बीच में आते थे, तब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो काफी समय बाबा के साथ भी रहने का मौका मिलता था। तो एक तो उसके अंदर हमने देखा, बाहर जितने कई बार यज्ञ में पेपर कम आए, क्या बहुत आए, लेकिन बाबा एकदम आते हैं। बच्चे, एक बार सुना होगा आप सबने, प्रदर्शनी लगाई थी, हमारे जो अति मित्र हैं उन्होंने आग लगा दी, सारा पंडाल प्रदर्शनी सब जल गई। तो हमारे कुछ बहुत अच्छे वकील आते थे, उन्होंने कहा बाबा हमारे पास इसका वीडियो है, ये है, इन्होंने जिन्होंने आग लगाई है, हम उन पर केस करें और 100% हम जीतेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बेटे के ऊपर, बच्चों के ऊपर केस थोड़ी कर सकता है। बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि हमने क्या किया है, चलो आगे से तुम सावधानी रखना, इंश्योरेंस कराओ, ये करो, लेकिन हम उन पर किसी पर भी केस नहीं कर सकते। तो देखो बाबा की दृष्टि कितनी महान, एक एक, लेकिन ये ही बाबा चाहता है हमारी भी ऐसी दृष्टि हो। और ऐसी दृष्टि भी बाबा की कैसी बनी शुरू में, हम सब ने सुना है, यज्ञ हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, आप सब तो पुराने हो, कि शुरू में बाबा ने यज्ञ में, हमारे दो डायरियां बाबा के हाथ की लिखी हुई थी। एक डायरी में क्या लिखा हुआ था, बाबा ने क्या पक्का किया था, मैं आत्मा। तो कोई चीज अगर होती है तो उसका प्रमाण दिखना चाहिए, जैसे बुखार है शरीर में तो उसका प्रमाण दिखता है, भाई फीवर थर्मामीटर लगाओ तो बुखार आएगा, या ब्लड प्रेशर हाई होगा, या ऐसे कोई ना कोई चिन्ह देखने में आएगा, फिर दवाई ले लेते हैं ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम आत्मिक स्वरूप में, इतने साल से हम भी नंबर वार, कोई 10 साल, कोई 15-20 अलग अलग साल से हम रोज ये पाठ पढ़ रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन प्रमाण क्या है कि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए हैं, बाबा से वो प्रमाण दिखता था। हम लोग जब जाते थे साकार में, बाबा से मिलते थे, शुरू में तो बाबा मिलते थे, जो बाहर चित्र लगा है ना, देखा होगा ऐसे, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट, बस बाबा हाथ फैला देता था, आत्मिक दृष्टि से देखता था, हम लोग भी चुंबक की तरह जैसे खींचे हुए ना, बाबा के बाह में समा जाते थे, वन बाई वन आते थे, बस फिर देहभान एकदम भूल जाता था। अभी तो फिर भी देहभान भुलाने की कोशिश करनी पड़ती है, योग में आते हैं, लाल लाइट होती है, रिकॉर्ड होता है, फिर भी समय लग जाता है, लेकिन वो तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी तुरंत विदेही। फिर एक आध मिनट के बाद बाबा ऐसे थपथपाता था, आओ हाँ बच्चे हाँ बच्चे, तो ऐसे जैसे बाबा फिर से हमें देह में ला रहा है। उसके बाद देह में हम अपने को मतलब महसूस करते थे, बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था और जो भी प्रश्न होते थे समाधान करके एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा, ऐसे वन बाय वन सब बाबा से मिलते थे। और लास्ट में तो लास्ट में माने 67 के बाद तो बाबा ऐसे बहुत, डॉक्टर ने बोला था बहुत आपको मिलना पड़ता है किसी का भी कोई इन्फेक्शन न लगे, और बाबा की आयु भी इतनी थी 93 एज, तो इसीलिए आप दूर से मिलो बाबा, और सबने यही करा। तो बाबा बहुत ऐसे ना बस जैसी दृष्टि देता था यूं दृष्टि दी तुरंत ही हाँ विदेही हो जाते थे, कोई ध्यान में नहीं जाते थे, साक्षात्कार में नहीं लेकिन विदेही। तो ये बाबा की आत्मिक स्थिति का प्रतीक था। और हम भी अपने को ये चेक करें कि अगर वास्तव में हम भी इतने टाइम से ये जो सुन रहे हैं ये आत्मिक स्थिति का, तो वो मैं भी जिस आत्मा को अगर दृष्टि देता हूँ या देती हूँ वो आत्मा भी विदेही हो जाती है। अगर हरेक को हम देह भुलाने के निमित्त बनते हैं, इसका मतलब मैंने ये पाठ पक्का किया है, और अगर नहीं इसका मतलब अभी मार्जिन है, अभी हमें और पुरुषार्थ करना है आत्मिक स्थिति में स्थित होने का। बाबा ने भी तो जैसे किया था, कितना किया, डायरी की डायरी भर दी, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो उससे क्या हुआ, जसोदा बाबा की युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी उनकी लड़की का नाम, नारायण लड़के का, तो व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, यही तो जाती है, पति पत्नी परिवार धन दौलत बिजनेस, यही तो बुद्धि भागती है। तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया यह आत्मा है, यह आत्मा है, तो वो इतना पक्का हो गया बाबा को, बस हरेक आत्मा को बाबा उड़ा देते थे। तो एक तो पाठ ये था। दूसरा बाबा ने ये रियलाइज किया ज्ञान में, देखो कितना इस उम्र में 60 वर्ष की आयु में बाबा ज्ञान में आए, फिर भी कितना स्टूडेंट रीति से। तो एक तो बाबा ने ये केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रखा, मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को सीरियसली लिया, आत्मिक स्वरूप में स्थित। दूसरा जो बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है, पिछले कई वर्षों से बाबा अव्यक्त मुरली में भी हम बच्चों को ये बात बोल रहा है। कौन सी बात, कौन सा होमवर्क दिया है, याद है, ये तो व्यर्थ संकल्प और समय ये तो आ गया। जो मन की बात, मन जीते जगत जीत, बाबा ने कई बार कहा है, रोज रात को सोने से पहले दरबार लगाओ अपने इन सूक्ष्म कर्मचारियों की, मन बुद्धि संस्कार की। तो बाबा ने भी 1936-37 में ये रियलाइज किया कि बाबा का ज्ञान है सब है, लेकिन मन भाग जाता है, मन टिकता नहीं है, जो हम सबका भी अनुभव है। भक्ति में भी कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, चाहते तो नहीं है लेकिन मन भाग जाता है। बाबा ने क्या किया फिर बताया, बाबा ने मन को पत्र लिखा, वो पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी सिंधी में, जैसे बाबा ने पत्र लिखा मन को उसे हिंदी में करके, आनंद किशोर दादा थे जो पुराने सीनियर भाई लोग थे, बहुत 35-40 साल पहले हम लोगों को पत्र दिया। क्या पत्र लिखा बाबा ने, गौर से सुनना, हे मन मैं राजा हूँ, आत्मा तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ने मुझ राजा को कमजोर कर दिया और मैं राजा तेरे वशीभूत हो गया, और तू जहाँ जहाँ भागता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, चलता रहा, मैं राजा होते हुए भी तेरे वशीभूत हो गया मंत्री के और भटकता रहा, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। बाबा ने ऑर्डर किया मन को। हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, लेकिन बाबा ने ये ऑर्डर, ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और मैं भी जैसे तुझ मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार सैनिक। तो मन अगर मंत्री और सेनापति मिल जाए, वो तो राजा को कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में वो ही बात हुई, मन मंत्री और बुद्धि सेनापति ने, और बुद्धि सेनापति और संस्कार सारे सैनिक हैं, तो पुराने संस्कार तो सेनापति के ही वश में है। तो मन मंत्री बुद्धि सेनापति ने मुझ आत्मा राजा को वश में कर लिया, और बाबा ने जैसे ये रियलाइज हुआ, मन और बुद्धि को पत्र लिख करके उनको चेतावनी दी, सूचना दिया, अब मैं तुम्हारे वशीभूत नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी शक्ति में, स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो हम भी चाहते तो यही हैं कि हम मन के वशीभूत ना हो, मन हमारे वश में रहे, लेकिन कमी क्या रह जाती है कि हम स्वमान की सीट पर स्थित होकर मन को ऑर्डर नहीं करते। बाबा ने क्या किया, स्वमान की सीट पर स्थित होके, लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, इवन प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जब तक वो अपनी सीट पर होता है तब तक सब उसका ऑर्डर मानते हैं, लेकिन जब उसका ट्रांसफर हो गया या रिटायर हो गया या दूसरी जगह चला गया, तो कोई उसका ऑर्डर मानेगा? नहीं मानेगा। बस आज यही बात है कि हम मन को ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर के ऑर्डर नहीं करते। तो पहले हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित हों, जो बाबा ने इतने सारे स्वमान दिए हैं उनमें स्थित हों। सबसे बड़ा तो यही है, मैं बाबा, मैं विजयी आत्मा हूं, आपने कलप पहले भी मुझे विजयी बनाया था, अभी भी मैं विजयी बन रही हूं, कलप कलप की मैं विजयी आत्मा हूं, बाबा आपने ही मुझे विजय दिलाई थी, मैं आपकी मस्तक मणि हूं। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मैं जैसे बाबा के मस्तक में यहाँ विराजमान, मैं बाबा आपके दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। विजुअलाइज करो, देखो अपने मन के तीसरे नेत्र से कि मैं बाबा के दिल तख्त पर, जो तख्त है वहाँ पर विराजित आत्मा हूँ। बाबा हम आपकी नैनों के नूर हैं, जो बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति, जीवन मुक्ति, नैनों में जैसे तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, बसे हुए हो। महान से महान स्थिति में हम स्थित हो करके उस तब हम अगर मन को ऑर्डर करते हैं, कोई शक्ति का आवाहन करते हैं, तुरंत ही वो शक्ति आ जाती है, मन ऑर्डर में आ जाता है, कंट्रोल में, और हम उस शक्ति को कहीं भी यूज कर सकते हैं। करके देखिए। और इससे क्या होता है, जैसे ही मन हमारे वश में हुआ, हमें महसूस हुआ, तुरंत ही अगर कोई भी बात आई भी है, वो बात दूर से ही चली जाती है। बाबा ने ये करा, करके दिखाया। इसीलिए बाबा के सम्मुख भी कई बार जाते थे हम लोग शुरू में, तो पहले तो बाबा सफिशिएंट टाइम दिया करते थे, 62 में मिलते थे, 63 में, बहुत छोटा सा हमारा बाबा का परिवार था, मिलते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, समय देते थे और काफी टाइम देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, 65, 66, 67, बाबा बस अंतर्मुखी ज्यादा होते जा रहे थे, गंभीर होते जा रहे थे, समेटते जा रहे थे। पहले बाबा 20-25 मिनट 30 मिनट तक भी देते थे एक एक बच्चे को, बीच में जब मिलते थे बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दस दृष्टि देखे, कहा हाँ बच्चे कैसे आए हो, तो बताया, कोई भी बात होती थी थोड़ी बहुत बताई दो चार लाइन, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और इस तरह बहुत लंबी चौड़ी बात करने की बजाय दो लाइन में ही बाबा की बात को समझ जाते थे। लेकिन अंत में सारा कमाल तो अंत में देखा, जैसा मैंने आपको बताया मुझे ये सौभाग्य है कि बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला 1969 में। अंतिम दो दिन में बस 17-18 जनवरी को बाबा से कई बार मिलने का मौका मिला, 6-7 बार बाबा से मिले, क्योंकि उस समय ज्यादा पार्टियां थी नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा ने ऐसे दृष्टि दी थोड़ी सी, और दृष्टि देखिए, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। पहले बाबा 20-25 मिनट देता था, बीच में पुरुषार्थ ऐसा चल रहा था बाबा 2-4-5 मिनट, लेकिन अंतिम दो दिनों में जो देखा, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ने दृष्टि दी, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता था, कैसे बाबा दिल की बात बिना एक अक्षर बोले हुए। तो बाद में जब बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी होते थे, उनसे एक बार पूछा तो उन्होंने कहा ये ही चिन्ह है मन जीते जगत जीत का, यही है। क्यों? क्योंकि बाबा के अपने मन के अंदर कोई संकल्पों की लहरें नहीं है। जैसे पानी अगर हो, पानी पड़ा हो, आप बिल्कुल स्थिर पानी हो, साफ हो, अपना प्रतिबिंब भी हमें स्पष्ट दिख सकता है, लेकिन पानी में एक छोटा सा कंकड़ डाल दो, लहरें पैदा होंगी, उसमें फिर प्रतिबिंब दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे अपने मन के अंदर संकल्पों की कुछ भी लहरें होंगी, हम दूसरे के संकल्पों को नहीं पढ़ सकते, हमारे अपने संकल्प उसमें मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने पहले अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करी, और बीच बीच में और अंत में हमने ये देखा, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा ये बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यह है मन जीते जगत जीत का प्रतीक, दूसरे के संकल्पों को। और यही बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है कि एक तो हम ये बाबा की तरह, इतना हमारे अपने संकल्पों के ऊपर विजय हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प न हो, तब संकल्पों पर जीत की ओर हम सहज बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये देखा, और साथ में अंत में जो बाबा की कर्मातीत अवस्था के दिन 7-8 जो बातें देखी, उनमें जैसे और दूसरा क्या देखा, बाबा अक्सर करके जब भी मिलते थे पार्टियों से, तो यहां मिलते थे या तो ये बाबा की झोपड़ी है, या बाबा अपने कमरे में भी, तब बाबा का छोटा कमरा था जहाँ पलंग पड़ा हुआ है, जितना उतना ही हिस्सा था, ये बाद में एक्सटेंड किया है, बहुत छोटा और पीछे की तरफ से दरवाजा था। तो बाबा से जब मिलने जाते थे, 2-3 लोग होते थे, तो बाबा अपने कमरे में भी एक तरफ पलंग था, दूसरी तरफ गद्दी बिछी हुई होती थी, बाबा गद्दी पर बैठे हुए होते थे, सामने हम लोग मिलते थे और बाबा वहां पर मिला करते। जब और ज्यादा कुछ 6-7-8-10 होते थे तो झोपड़ी में मिल लेते थे, और जब कोई बड़ी पार्टी होती थी तो पहले तो 15-20 की पार्टी भी बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो वो ज्यादा होते थे तब हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो बाबा का एक ये अभ्यास खास देखा, जो अंत में हमारे अशरीरी बनने में और बहुत काम आएगा, वो था जब चाहे देह में आना, जब चाहे देह से न्यारा हो जाना। बस टाइम मिला हुआ होता था पार्टियों को कि भाई मानो 10 बजे बाबा से बंबई की पार्टी मिलेगी, 10:30 कलकत्ता की, 11 बजे दिल्ली की, आदि आदि ऐसे टाइम समय होता था। ब्राह्मणी जाती थी बाबा के पास, जो टीचर ग्रुप को लेके आई हुई होती थी, बस देखा बाबा बैठा है, मस्ती में मस्त है, बिल्कुल आंख खुली हुई है, कोई साक्षात्कार या ध्यान नहीं, लेकिन बस बाबा जैसे अपनी मस्ती में शरीर यहाँ है, बुद्धि से जैसे कहीं और, जो बाबा ने अपने पांच स्थान भी बताए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं विश्व की आत्माओं को, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी किसी भी रीति से, बुद्धि से जैसे बाबा इस देह से न्यारा। टीचर जाती भी थी, सामने भी कई बार हो जाती थी, लेकिन बाबा जैसे न्यारा। टीचर बोलती थी बाबा बाबा, तो कई बार थोड़ा बाबा को जैसे जर्क सा भी लगता था। है बच्ची, अच्छा आओ पार्टी लेके आए हो, आओ आओ आओ। तो बाबा फिर उन सबसे मिलता था पार्टी से, एक एक पार्टी वाला मिलता था, बाबा से बात करता था, गोद लेता था, टोली खाता था, एक एक इस तरह पूरी पार्टी मिलती थी। तो बात क्या है, और जब जैसे ही पार्टी गई, फिर बाबा उसी स्थिति में स्थित हो गया। तो जब चाहे हम देह में आए, कार्य करना है उसके लिए आए, जब चाहे जो भी थोड़ा भी समय मिले देह से न्यारे हो जाए। और जो बाबा ने हमें बुद्धि को काम दिए हैं, ये अभ्यास अंत समय में हमें बहुत काम आएगा। और ये अभ्यास अगर हमें नहीं होगा तो देह की व्याधि भी हमें बहुत कष्ट देगी, क्योंकि महसूस करने वाली तो आत्मा ही है ना। और इसीलिए क्या होता था हिस्ट्री हॉल में, कई बार जो क्लास होती थी यहाँ पर बाबा से मिलते थे, कई बार बाबा को खांसी काफी आती थी, और खांसी आते आते बस कई बार तो आंख भी जैसे थोड़ी सी नम हो जाती थी। और लेकिन क्या ब्यूटी होती थी बाबा की, दूसरे ही क्षण ना, एक वो आए बाबा, थोड़ा महसूस हो रहा है कि जैसे कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण, बच्चे देखो अभी तो ये कष्ट है, ये बाबा की सखी है। खांसी को बाबा क्या बोलता था, ये मेरी सखी है। मैं शिव बाबा को कई बार बोलता हूँ बाबा मेरा इस सखी से पीछा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या जवाब देते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो तुम्हें चुकतू करना है, अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊं तो इतने सब बच्चों को भी छुड़ाना पड़ेगा, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब अपना है, हर एक को अपना चुकतू करना है। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा नहीं। तो इसीलिए शरीर की कोई भी व्याधि हो, उससे कभी भी हम हताश निराश दुखी ना हो, क्यों, ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे, हमें कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति को बदलने का अभ्यास चाहिए। बाबा क्या करता था, बस क्लास में भी खांसी हो रही है, तकलीफ हो रही है, दिख रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा, अरे बच्चे देखो ये बाबा के पास में ना श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था, देखो बच्चे आज ये पुराना शरीर है, तकलीफ है, ये है, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा, बस बच्चों को तो इतनी खुशी होनी चाहिए, बस गम को खा जाए खुशी, इतना वो हो, बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गिया मारनी चाहिए। बाबा दिखाता था कैसे खग्गिया, बस बच्चे कल बाबा जाके ये हो, कल बाबा ऐसा बनेगा, ऐसा बाबा के चेहरे पर वही श्री कृष्ण का भाव आ जाता था, और बस सारा किसी को वही नहीं रहती थी स्मृति की, अभी दो मिनट पहले इतनी खांसी हो रही थी जो बाबा को इतना कष्ट दे रही थी। तो ये है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय का प्रतीक। इतनी परिस्थिति विकट होती थी, तकलीफ होती थी, ये होता था, लेकिन बाबा अपनी स्वस्थिति से उसको बदल करके उसको कंट्रोल कर लेता था, और फिर खुशी में आ जाता था। बाबा भी यही चाहता है हम बच्चों से, कि परिस्थितियों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, बल्कि हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि हम परिस्थिति को बदल सके। यही अभी तो क्या परिस्थितियां आई, टीवी में भी देखा, उत्तराखंड में इतने लोग मर गए, तो अनुभव सुना रहे हैं, रो रहा है कुछ, हमारे भी दिल में थोड़ा सा वो होने लगता है। अभी परिस्थितियों का हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन होना ये चाहिए जैसी भी परिस्थिति हो, हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो उस परिस्थिति पर संपूर्ण रीति से विजय। और इसका प्रतीक अंतिम मुरली में भी देखा, 18 जनवरी को बाबा मुरली चला रहे थे हिस्ट्री हॉल में, और हम लोग सामने बैठे हुए थे, बस बाबा मुरली सुना रहे थे। उस दो दिन से बाबा को काफी तकलीफ थी, खांसी थी और वो, लेकिन उस अंतिम मुरली में एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी। इतनी फ्लॉलेस मुरली चली। वो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था आत्मा की होती है तो कर्म भोग जितना है ना, उन सब के ऊपर हमारा योग बल जो है विजय प्राप्त कर लेता है। फिर कर्म भोग हमें कोई तकलीफ नहीं देते। धीरे धीरे हमें उसी स्थिति को लाना है। कर्म भोग होगा, शरीर में बहुत तकलीफ भी होगी, सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे होंगे, लेकिन बस ऐसी स्थिति हो जो ये बाहर की परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके। ये बाबा एक ये संदेश अंत तक देते चले गए। तो ऐसी हमें अपनी स्थिति और मजबूत करनी है। और क्या देखा बाबा का इन दिनों में, वो बाबा जैसे अंत में निकले और बाबा यही बोलता है कि मुरली चलाई और ये जो बाबा का बताया ना, मन जीते जगत जीत, जगत में तो सभी आ गए। तो हम भी सामने बैठे हुए थे मुरली में, बस मुरली सुनते सुनते हमें एक संकल्प आया। हम आप सबको भी आता होगा जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं, सुनते हैं, मुरली सुनाते हैं कि क्या ही अच्छा हो अगर हमें स्टेज पर जाने को मिल जाए, जैसे दादियां जाते हैं, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, ऐसे संकल्प तो आते हैं ना हर एक को। हम भी सामने बैठे हुए थे, हमारे मन में आया कि बस बाबा कुछ हमारी उन्नति के लिए, क्योंकि उस समय हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे और आसाम से यहाँ आ गए थे, दो दिन पहले बाबा ने बुला लिया, तो वहाँ पर कोई सेंटर तो ऑफिशियली था नहीं, तो इस वजह से वहाँ खुद ही चलाते थे। तो बाबा कोई पर्सनली सो उन्नति की बात करे, सेवा की बात करे, कुछ बाबा डायरेक्शन थे। तो बस मन में संकल्प की देरी हुई, जैसे संकल्प हुआ और जो भक्ति मार्ग में गायन है ना, जो इष्ट देव होते हैं, इष्ट देवियां होती हैं, अपने भक्तों के संकल्प को पढ़ करके, उनका सुन करके, जान करके, बस उनके मुंह से और क्या निकलता है, तथास्तु, बस एक अक्षर ही, कोई बार्गेनिंग नहीं। भक्त ने कहा हे भगवान मुझे एक मारुति कार दो, और भगवान बोले नहीं तुम स्कूटर से ही काम चला लो, ऐसी बार्गेनिंग होती है कभी नहीं, बस तथास्तु, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ही मन में संकल्प की देरी हुई, जैसे ही संकल्प उठा और तुरंत ही बाबा ने ना मुरली में चलाते हुए बस उसी वक्त ही देखो नाम लेकर भी कई महावाक्य उच्चार दिए उसमें, बहुत उल्लास के, उमंग उल्लास के, गाइडेंस के बहुत। तो ये है एक्चुअली बाबा चाहता है हम बच्चों को भी, ब्रह्मचारी तो हम बन गए लेकिन अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी, पवित्र बन गए जो यहाँ बैठे हैं सब वो धारणा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के कदम पर कदम, अंत में हमारे द्वारा ऐसा ही पार्ट जो सृष्टि की आत्माएं, हमारे द्वारा ये पार्ट चले, तब लोग जानेंगे, कहेंगे हाँ यही भगवान के स्वरूप है, यही हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हैं। तभी वो लोग हमारी मूर्तियां बना के द्वापर युग से मंदिरों में रखेंगे और हमारे मंदिर में बहुत भक्तों की लाइन क्यू की क्यू लगी रहेगी, अगर हमने यहाँ पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हुई होंगी। वही बाबा चाहता है कोई भी आत्मा आए आपके हाथ घर से खाली न जाए। और ये कब होगा, ये अंतिम दिन हमने देखा बाबा के पास जैसे आए, बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा हिस्ट्री हॉल से बाहर निकले और बच्चे को दृष्टि दी, सबको जैसे निहार रहे हैं, और उसके बाद बाबा अपने कमरे में आए हाथ में हाथ दादी जी के, जैसे बाबा ने छुट्टी ली, विदाई ली, आत्म पंछी उड़ गया। लेकिन कमाल की बात तो उसके बाद देखिए क्या, कि 18 जनवरी की शाम को बाबा ने ये शरीर छोड़ा 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 को सारा दिन रखा रहा, 19 की रात को, 20 को सारा दिन, 20 की रात को, और 21 को संस्कार किया गया, वो भी दोपहर के बाद 2-3 बजे। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ, कोई काला नहीं पड़ा। नहीं तो जब आत्मा चली जाती है, एक तो शरीर में रंग काला हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने स्नान करा 21 तारीख को, जो शांति स्तंभ है यहीं पर ही बाबा का अग्नि संस्कार किया था। यहाँ उससे पहले बाबा के शरीर में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वैसे ही थी, कोई स्टिफ नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई उसके अंदर केमिकल लोशन कोई लेप वगैरह नहीं किया गया। ये है बाबा का प्रकृति के तत्वों पर विजय का प्रतीक। इसीलिए जब मन जीते जगत जीत बोलते हैं, तो जगत में सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं आती, जगत में तो पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे सब आ गए। और ये 5 तत्वों पर भी बाबा ने जैसे विजय प्राप्त कर ली। अंत में बिल्कुल वैसा ही, कोई दुर्गंध नहीं लगता था, बाबा भी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और हमेशा की तरह बाबा उठेंगे, कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। तो बाबा अभी हमें भी प्रकृति जीत बनाना चाहता है। तो प्रकृति जीत के लिए क्या करें, बड़ा सहज कुछ बातें हैं हम, और जो उत्तराखंड में हुआ अभी 5 तत्वों का तो बहुत बहुत बड़ा पार्ट चलना है बाबा ने कहा। लेकिन ये 5 तत्वों को हम कैसे अपना मित्र बना ले कि अंत में ये हमारी मृत्यु का कारण ना बने। क्योंकि अंत में ना अगर ये मृत्यु का कारण बन गए, अभी जैसे हुआ एकदम क्लाउड बर्स्ट हो गया, सडनली पानी आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, जमीन हिल गई, उस समय अगर ना मानो यही बैठे हैं और अगर ये छत गिर गई, लोहा गिरा, शरीर को व्याधि हो रही है, चीख पुकार चारों तरफ हो रही है, त्राही त्राही, ऐसे में अगर हमने शरीर छोड़ा ऐसे वातावरण में, तो अंत में सोगति हो जाएगी। हमारी अंदर की स्थिति अचल रहे और ये प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए क्या करना है, प्रकृति को विजयी बना ले, प्रकृति को मित्र बना ले। क्योंकि मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। इसने प्रकृति को मित्र बनाने का भाव क्या है, जो प्रकृति, देखो जो दो लोगों के बीच में मित्रता होती है, किनके बीच में, जिनके संस्कार समान होते हैं। शराबी होगा, शराबी के साथ दोस्ती होगी, आध्यात्मिक होगा, भजन में जाने वाला भजन वाले के साथ होगी। मित्रता माने समान संस्कार वालों के साथ। ऐसी प्रकृति के साथ हम मित्रता कर लें, यानी प्रकृति के संस्कार के साथ हम अपने संस्कार मिलाते हुए चले। मानो जल है, अभी जैसे जल इतने मृत्यु का कारण बन रहा है, इतने कष्ट का कारण बन रहा है, क्यों, ये जो जल के साथ ना, जल में कौन सा गुण होता है सबसे बड़ा, शीतलता, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। ये जल का बहुत बड़ा, गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच में भी लो चम्मच में आ जाएगा। तो हर एक चीज के साथ सेट हो जाता है, एडजस्टमेंट। ऐसे मेरा संस्कार ऐसा हो मैं हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सकूं, सेट होके, ये ना कहूं कि इनके साथ तो सेट होना बड़ा मुश्किल है, हाँ इनके साथ सेट होके चल सकते हैं, नहीं, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके। यही बाबा में गुण था, बाबा के सम्मुख जो आता था हर एक को लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। बच्चे के साथ बाबा बच्चे की तरह, बूढ़े के साथ बूढ़े की तरह, जवान के साथ बिल्कुल जवान की तरह एकदम बाबा ऐसा व्यवहार करता था, हर एक बिल्कुल बाबा पर बलिहार जाता था। हर एक को लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे हितैषी है, भले ज्ञान में चले न चले, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, नम्र स्वभाव है, स्नेही है, सहयोगी है, रेस्पेक्ट है इनके अंदर, आदि आदि। तो जल की तरह अगर हमने अपना ये गुण धारण किया होगा, तो सबसे बड़ा, तो जैसे जल जो है ना कभी रुकता नहीं, जल बह रहा है, सामने बहुत बड़ा पत्थर भी आ गया ना, जल रुकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम घाम के जहां रास्ता मिलेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर हमने फ्लेक्सिबल नेचर होगी तो हम हमेशा बढ़ते रहेंगे, कोई परिस्थिति पेपर परीक्षा आएंगी तो उसमें हम रुकेंगे नहीं। एक तो ये जल की तरह हमने अपना गुण धारण किया, हर एक तत्व के गुण कई हैं, और बाबा का यही देखा, हर एक के साथ एडजस्टेबल नेचर। दूसरा पृथ्वी है, हाँ? धरा, पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? सहन शक्ति तो है, लेकिन पृथ्वी का एक सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है, आप एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, पृथ्वी सब देती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप बच्चे भी दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो, आपके सम्मुख कोई भी आत्मा आए खाली हाथ न जाए। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, उसे प्रेम दो, शांति दो, सहयोग दो, स्नेह दो, रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, उसको ऐसा अनुभव हो। ये चीजों में तो कोई खर्चा होता ही नहीं, इसीलिए बाबा के सम्मुख जो आता था, बीवी दादियों के सम्मुख भी जो जाता है, वो स्नेह का प्रतीक, भले स्थूल गिफ्ट वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा स्वरूप हो हमारा, हर व्यक्ति हम हमारे सम्मुख आए भरपूर होकर चला जाए धरती की तरह, तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुण सहनशीलता है, धरती का गुण ये दातापन का है। ये सब जितने गुण आते जाएंगे, इसका मतलब धरती जितनी भी हिलेगी अंत समय में बहुत तूफान भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक हो गए, अभी भी लैंडस्लाइड हुआ उत्तराखंड में, साथ में पानी, तीन तीन तत्व का एक ही साथ आक्रमण हो गया, लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से आकाश मार्ग से बरसात, और ये पूरा बाढ़ की तरह। तो जल तत्व भी हो गया, आकाश तत्व का भी हो गया, और पृथ्वी तत्व का, धीरे धीरे करके देखो ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी पहले एक तत्व होता था, दूसरे मदद कर देते थे, अभी तीन में ही इतना हो गया, और जब पांचों तत्व अपनी चरम सीमा में होंगे तो क्या होगा। तो ये तत्वों से बचने का यही है कि तत्वों के साथ साथ हम अपनी मित्रता करते चले। ऐसे सूर्य का क्या गुण होता है? अग्नि तत्व। अग्नि का ये है कि अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता। ऐसे ही हमारा भी बाबा इसीलिए कहता है, ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग करो बच्चों, ऐसा योग हो जो उसमें जो भी हमारे सम्मुख आए उसका स्वरूप बदल जाए। रोती हुई आत्मा आए, बाबा ने कहा हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख में की अनुभूति में डूब कर चली जाए। कब होगा ये, कब रूप बदल सकेंगे? ब्रह्मा बाबा का यही देखा, बाबा का जो भी आता था बाबा के सम्मुख, भले थोड़े समय के लिए विदेही हो जाता था, बाबा से प्रेम का, शांति, सब चीज का अनुभव करता था। बाबा कई बार पूछता था, हाँ बच्चे कुछ पूछने आए हो? सब भूल जा, नहीं बाबा सब मिल गया। जैसे ये है जैसे रूप बदलने का। और क्या है, वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। ऐसे ही अगर हमने वायु का ये हल्केपन का गुण धारण किया, कोई पेपर आए, परीक्षा आए, प्रॉब्लम आए, समस्या हो, लेकिन हम भारी ना हो। अक्सर करके अगर कई बार हम भारी हो जाते हैं, कोई समस्या प्रॉब्लम पेपर आया तो क्या होता है, जो भारी चीज है वो पृथ्वी की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है पृथ्वी, हल्की चीज ऊपर उड़ती है। तो हम वायु की तरह हल्के रहें, और जितना हम हल्के रहेंगे ना, तो अंत समय में वायु चाहे जितनी गति से बहेगी, 150, 200, 250 किलोमीटर की, अक्सर करके समुद्र के किनारे के जो भी स्थान होते हैं वहाँ साइक्लोन ज्यादा आते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर है, सारी दुनिया के ऊपर उसने कंट्रोल किया हुआ है कई चीज, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान हो, इराक हो, कोई हो, वहां जाता है, लेकिन प्रकृति के तत्वों के सामने वो भी, वहां बहुत सारे कैटरीना, लैला, कई प्रकार के तूफान आते हैं, वो भी बस निस्सहाय बनकर देख लेते हैं। लेकिन हम बच्चों में ही ये शक्ति है जो प्रकृति के तत्वों पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बस इन उनके गुणों को हम धारण करते रहेंगे। और इसी तरह आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? हाँ, विशालता। आकाश का जो है बाबा कहता है फिराक दिल बनो, विशालता इतनी हो जो हम किसी के भी अवगुणों को उसके अंदर संभाले। और आकाश तत्व के कारण ही आज आकाश में सैटेलाइट छोड़ देते हैं तो मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, कम्युनिकेशन हमारा सबके साथ सहज होता रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर फिराक दिली है, बड़ापन है, कैसे पता चलेगा? हमारा किसी से भी आत्मा से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ना हो। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध मधुर होते हैं उनको हम टाइम देते हैं, उनसे बात करेंगे, और जिनसे संबंध में उतनी मधुरता नहीं होती है, सामने भी आ रहा होगा तो नजर बचा के निकल जाएंगे, सामने बैठा होगा दृष्टि देने की भी बात होगी तो उस आत्मा के प्रति दृष्टिदान उतना नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर फिराक दिली जितनी बाबा चाहता है अभी हम बच्चों से उतनी नहीं है। तो अभी आवश्यकता है आकाश की तरह विशाल बने। उससे क्या होगा कि आकाश मार्ग से जो भी समस्या आएगी, रॉकेट आएगा, मिसाइल आएगा, कोई बम आएंगे, चाहे ये अभी बरसात का हुआ, कोई भी चीज होगी, लेकिन वो हमारी मृत्यु का, दुख का, अशांति का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया। तो मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है, मित्र प्राण नहीं लेगा। तो भाव क्या है एक एक तत्व के? यहाँ तो मैंने एक एक दो दो गुण बताया, आप निकालो हर एक में कम से कम 10-10 गुण हैं हर एक तत्व के। और वो हमें ये सावधानी देते हैं कि उन गुणों को हम धारण करते चलेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे, और इन तत्वों पर हम वैसे ही विजय प्राप्त कर लेंगे जैसी ब्रह्मा बाबा ने भी प्राप्त की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यहाँ पर आप आए और शांति पूर्वक सुना, बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। प्रकृति जीत कैसे बने? बने है? हमारे आदरणीय भ्राता मोहन जी ने हम सबको सोचते हैं ना, बाबा कहता है प्रकृति जीत, कर्म इंद्रियां जीत, कैसे बने? जब उनके गुणों को स्वयं में धारण करें और उन जैसे गुणों को ही साकार में बाबा ने भी अपने में अपनाया हुआ था। बाबा की भी यही बातें याद करते हैं ना, बाबा बड़े उदार थे। कोई भी आता था, वो साउथ का हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, हर कोई कहता था मेरा बाबा। किसी को ये नहीं लगता था ये सिंधियों का बाबा है या गुजराती का बाबा है। नहीं, बाबा स्वयं हदों से ऊपर उठे हुए थे और हम बच्चों को भी ऐसे ही ऊपर उठाया। तो हम अपने आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार। आज हमने जब सवेरे देखा इतने भाई बहने हमारे पहुंचे हुए हैं, तो हमने कहा कि भाई साहब आप तो आज ही क्लास ले लो। तो आप हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे तुरंत तैयार हो गए। बाबा कहता है एवर रेडी, आप बाबा के एवर रेडी बच्चे हैं। ऐसी महान आत्माओं को पुनः धन्यवाद, अभिनंदन।
गुण ओम शांति।